ईरान की सांस्कृतिक धरोहर।
श्रोताओ, कार्यक्रम ईरान की सांस्कृतिक धरोहर में आपका स्वागत है। स्वाति और हसन अब्बास का सलाम स्वीकार करें। आज के कार्यक्रम में हम कपड़े पर छपाई की कला के बारे में बात करेंगे और इस संदर्भ में दो महत्वपूर्ण उदाहरण आपके सामने रखेंगे।
ईरान की हस्तकलाओं में एक कलमकारी है जिसे इस्फहान में अन्य क्षेत्रों से अधिक लोकप्रियता प्राप्त है। कलमकारी सूती कपड़े पर डिजाइनें बनाने की कला है। वस्त्रों के ऊपर निश्चित पैटर्न या डिजाइन के अनुसार रंग चढ़ाने की प्रक्रिया को कपड़े की छपाई कहते हैं। एक अच्छी छपाई वह है जिसमें रंग सूत के साथ एकाकार हो जाए ताकि घर्षण से या धुलाई करने पर भी रंग न छूटे। अब तक कपड़े की छपाई के जो नमूने मिले हैं वह गजनबी के बाद के हैं। इसी वजह से बहुत से अनुसंधानकर्ता यह मानते हैं कि इस कला की शुरुआत गजनबी काल में हुई है, लेकिन यह प्रबल संभावना है कि सफवी काल में भरपूर तरीके से प्रचलित थी। यही कारण था कि इस शासन श्रृंखला के दौर में इस्फहान ही नहीं बल्कि यजद और काशान में भी कपड़ों को इस कला से सजाया जाता था। कलमकारी से सजे सूती कपड़े तेहरान के म्यूजियम में रखे हुए हैं। यह सफवी काल के राजाओं के कपड़े हैं। इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि सफवी काल में यह कला प्रचलित थी।
ईरान के प्रख्यात शोधकर्ता दिवंगत मोहसिन मुकद्दम का मानना है कि सफवी दौर ईरान में हस्तकलाओं के पनपने और फैलने का बहुत अच्छा दौर था। उन्होंने तेहरान में जो संग्रहालय बनाया है उसमें कलमकारी किए हुए कपड़े रखे हैं। सफवी काल में पुरुषों और महिलाओं के कपड़े कलमकारी किए हुए होते थे और उस समय इन कपड़ों का बड़ा महत्व था। काजारी काल में ईरानी चित्रकला में बदलाव आया जिसके तहत आम जनता के स्तर पर फैली चित्रकला के चित्र कलमकारी में भी प्रयोग होने लगे तथा पारंपरिक धार्मिक और शौर्य गाथाओं से जुड़े चित्र भी कलमकारी की कला का विषय बन गए। इसी तरह कहवा खानों में नजर आने वाले कलमकारी शुदा कपड़े बनने लगे। कपड़ों के साथ ही पर्दों को भी कलमकारी की कला से सजाया जाने लगा। इन पर्दों पर इतिहास की महान घटनाओं को कलमकारी के माध्यम से चित्रित किया जाता था। ये पर्दे धार्मिक स्थलों पर अधिक नजर आते थे। इस्फहान की कलमकारी को अन्य नगरों में भी ख्याति मिल गई और इसी शैली को दूसरी जगहों पर भी प्रयोग किया जाने लगा।
अलबत्ता इस समय कलमकारी की जो कला प्रचलित है वह अतीत की कला से काफी अलग है। पहले सूती कपड़ों पर रंग और ब्रश के माध्यम से डिजाइनें बनाई जाती थी, लेकिन अब डिजाइनें बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाने लगा है। लकड़ी के मोहरों की मदद से कपड़े पर डिजाइनें बनाई जाती हैं। किसी एक मोहरे को बीच में रखकर इसी ध्रुव पर कोई आकृति तैयार कर दी जाती है। इस केंद्रीय मोहरे को कालिब कहा जाता है। कालिब बनाने के लिए गुलाबी के पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। गुलाबी एक फल है जो नाशपाती से बहुत मिलता है। कलाकारों का कहना था कि इस लकड़ी का कालिब या सांचा बहुत अच्छा बनता है क्योंकि यह लकड़ी बहुत मजबूत होती है और टेढ़ी नहीं होती। डिजाइन में बने नक्शे जितने मोटे होते हैं लकड़ी तराशने का काम उतना आसान होता है, और यदि आकृतियां बहुत छोटी है तो लकड़ी तराशने का काम बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कालिब तैयार करने का काम कलमकारी की कला में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बारीक काम होता है।
जो कालिब या सांचा बनाया जाता है उसके कई प्रकार हैं। कुछ कालिब प्रेम के विषयों से संबंधित हैं, जैसे यूसुफ और जुलेखा का कालिब या शीरियों फरहाद का कालिब। प्राचीन कहानियों को चित्रित करना और उनके साथ लोमड़ी, बगले या काल्पनिक पशु पक्षियों के चित्र बनाना, ऐतिहासिक अवशेषों जैसे पेर्सपोलिस के चित्र, कवियों या विद्वानों जैसे फिरदौसी और इब्ने सीना के चित्र बनाना, प्राकृतिक दृश्यों के चित्र बनाना या साजिंदों और फूल पत्तियों के चित्र बनाना अलग अलग कालिबों के विषय हैं।
कलमकारी का काम इस तरह होता है कि पहले कपड़े का चयन किया जाता है, फिर उसे अलग अलग आकारों में काट कर धोया जाता है। कलमकारी में प्रयोग होने वाले सारे रंग वनस्पतीय होते हैं। कलमकारी में दक्ष लोगों को वनस्पतीय रंगों की बहुत व्यापक जानकारी होती है। इस तरह खनिज लवण के बारे में भी इन विशेषज्ञों का ज्ञान बहुत अधिक होता है। इनकी मदद से वह विभिन्न प्रकार के चमकीले रंग तैयार कर लेते हैं।
पहला रंग काला होता है, जो पृष्ठभूमि के लिए प्रयोग किया जाता है। ये रंग अखरोट के छिलके से बनाया जाता है। इसके बाद दूसरे रंगों का प्रयोग किया जाता है। जाज नाम के एक पत्थर और रोनास नाम की एक वनस्पति से लाल रंग तैयार कर लिया जाता है। इसी प्रकार अनार, अंगूर सहित कई वनस्पतियों के प्रयोग से सफेद, हरा और नीला रंग बनाया जाता है। वनस्पतियों तथा अन्य वस्तुओं से बनाए गए रंगों को अलग अलग कालिबों के माध्यम से कपड़े पर डिजाइन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। रंगाई हो जाने के बाद कपड़े को धो लिया जाता है, ताकि जो अतिरिक्त रंग है वो कपड़े से हट जाए और कपड़ा बिल्कुल साफ हो जाए। इसके बाद डिजाइनों वाले भागों में रंगों को मजबूती से जमाने की प्रक्रिया शुरू होती है, ताकि रंग बाद में फीका न पड़े और डिजाइन आपस में असली रूप में बाकी रहें। काम पूरा हो जाने के बाद कपड़े को नदी के किनारे रेत पर फैला दिया जाता है, ताकि वो पूरी तरह सूख जाए।
अतीत काल में अधिकतर धनवान लोग कलमकारी किए हुए कपड़े पहनते थे, और कुछ लोग तो ऐसे भी कपड़े पहनते थे जिन पर सोने का प्रयोग करके कलमकारी का काम किया गया होता था। इसी तरह बहुत से शौकीन लोग अपने घोड़े की जीन और नमदे को भी कलमकारी की कला से सजाते थे। इसके अलावा खेमे बनाने के लिए भी कलमकारी के कलाकारों की मदद ली जाती थी। कभी कभी खेमे का पूरा एक भाग भी कलमकारी की कला से सजा दिया जाता था, जिसे पर्दे के लिए भी प्रयोग किया जाता था। शादियों और अन्य समारोह में भी कलमकारी किए हुए कपड़ों से समारोह के स्थान को सजाया जाता था, और मेहमानों के गुजरने के लिए बनाए गए गलियारे इन्हीं कपड़े से सजे हुए नजर आते थे। मेजपोश, घर और दुल्हन के कमरे को भी कलमकारी किए हुए कपड़ों से बड़ी सुंदरता के साथ सजाया जाता था। इस समय कलमकारी का काम कपड़ों, जानमाज, दस्तरखान, पर्दे, मेजपोश, कुर्सी के कवर, महिलाओं के पर्स और जूतों पर किया जाता है।
बाटिक छपाई भी कपड़ों की छपाई की एक विख्यात शैली है, जो इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, भारत और ईरान जैसे देशों में बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। बाटिक छपाई का अर्थ है मजबूत छपाई। इसमें सभी रंगों और डिजाइनों को रंगरेजी की विशेष शैली के माध्यम से कपड़े तक पहुंचाया जाता है। इसके लिए रेशमी कपड़ों का प्रयोग किया जाता है। इस छपाई में कपड़े के दोनों ओर एक ही डिजाइन और एक ही रंग नजर आता है। इस छपाई में प्रयोग होने वाले अधिकतर रंग भी वनस्पतियों से ही तैयार किए जाते हैं।
हर क्षेत्र की बाटिक छपाई वहाँ की परंपराओं, रस्मों, संस्कृति और मान्यताओं को प्रतिबिंबित करती है। इस छपाई से तैयार होने वाले कपड़े आम तौर पर बहुत सुंदर होते हैं। यह कपड़े अपनी सादगी के साथ ही साथ यह भी बताते हैं कि एक पुरानी परंपरा और पुरानी कला किस तरह इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी अपना अस्तित्व बाकी रखने में सफल हुई है। यह कला पूर्वजों की महानता और सौंदर्य बोध को भी दर्शाती है। इस छपाई के माध्यम से बहुत सी चीजें तैयार होती हैं। इस छपाई वाले कपड़ों से तरह तरह के पर्दे और वस्त्र तैयार किए जाते हैं।
बाटिक शब्द इंडोनेशियाई भाषा से फारसी में आया है। ये ऐसी कला है जिसका जन्म चीन में हुआ, फिर वहां से ये कला भारत, मिस्र, रूस और ईरान तथा अन्य स्थानों तक पहुंची। ईरान में बाटिक छपाई की शुरुआत तबरेज शहर से हुई। इस कला के बहुत विख्यात कलाकार हुसैन कलागजी गंजी ने हैं। इस समय भी ये छपाई तबरेज में प्रचलित है, और तबरेज तथा उसके निकट स्थित इस्कू नगर को इस छपाई का केंद्र माना जाता है। इस छपाई में कलाकार पहले रेशमी कपड़े को रंगते हैं, जिसके बाद इसके डिजाइन बनाने के लिए तैयार करते हैं। कलाकार पहले तो अपने मन में डिजाइनें तैयार करता है, फिर कालिबों को मोम द्वारा ढांक देता है और फिर उस पर दबाव डालता है। मोम कपड़े के भीतर चला जाता है। इसके बाद कपड़े को रंग में डाल दिया जाता है। जहां जहां मोम नहीं लगा है वो जगह रंग उठती है। जिस जगह मोम होता है वहां रंग नहीं पहुंचता। अब यदि इस जगह को रंगना हो जहां मोम लगाया गया था, तो दूसरे कालिबों का प्रयोग करना पड़ता है। बाद में भाप और गर्म पानी की मदद से मोम को कपड़े से छुड़ा दिया जाता है।